सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धि मुपाशिताः यतो बुद्धि मुपादायो मुक्तो अट्टामिह तां शृणु। अवधु दत्तात्रेय महाराजा यदु को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। अवधु दत्तात्रेय ज्ञानोपलब्ध महापुरुष हैं और महाराजा यदु जिज्ञासु हैं, ज्ञान को पाना चाहते हैं। वो वक्ता और श्रोता जहां एक स्तर के हो वहां ज्ञान का श्रवण फल देना शुरू कर देता है। कृष्णार्थी वक्ता हो और श्रोता भी कृष्णार्थी हो, वहां पर कृष्ण तत्व प्रकट होना शुरू कर देता है। मिलना बहुत कठिन है श्रोता और वक्ता भी बहुत कठिन है मिलना, इसीलिए श्रुति ने भी कहा और भगवान श्री कृष्ण ने भी, आश्चर्यो वक्ता कुशलश्च श्रोता। वक्ता और श्रोता मिलना आश्चर्य है और दोनों में कौशल हो, वक्ता में बोलने का और अज्ञान को काटने की शक्ति का कौशल और श्रवण करने वाले श्रोता में श्रवण करने का कौशल। श्रवण करना भी एक विधा है, श्रवण करना भी एक तरीका है, उसकी योग्यता है और उसके मूल में आस्था है। श्रद्धावान लभति ज्ञानम, जितना व्यक्ति ज्यादा आस्थावान होगा उतना ज्यादा ज्ञान को स्वीकार करेगा और स्वीकृति के साथ वो होना शुरू कर देगा। ज्ञान कभी कोई सामान्य नहीं होता है, ज्ञान कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान है, वो केवल ग्रहण करने वाले व्यक्ति की योग्यता के ऊपर निर्भर है कि वो उसको किस रूप में ले रहा है। जो ज्ञान अनादि परंपरा से, प्राचीन परंपरा से अवधु दत्तात्रेय को मिला, वही ज्ञान वो बोल रहे हैं, कोई नया नहीं है। लेकिन आज एक जिज्ञासु है, अवधु दत्तात्रेय को मिला एक जिज्ञासु और वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जिज्ञासु मिले बिना ज्ञान महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। बड़े प्रसन्न है अवधु दत्तात्रेय और अनेकों प्रकृति के पदार्थों से उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को कैसे पाया उसका क्रम से विश्लेषण कर रहे हैं। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि ही चंद्रमा रवि ही कपोतो अजगर सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः। उन्होंने आकाश से भी शिक्षा ग्रहण की। ये पांच भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। ब्रह्म तत्व के संदर्भ में श्रुति को उपदेश करना था। ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, आत्म तत्व क्या है, तो समझाने के लिए श्रुति दृष्टांत देती हैं। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, आत्मा कैसे हैं इसको प्रतिपादन करना था। और जब आप उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तो बात समझ में आती है। तो कौन सा दृष्टांत हो सकता है आत्म तत्व को बताने के लिए? और जो दृष्टांत होता है वो सिद्धांत के निकट का होता है, जो आप समझा रहे हैं वो करीब करीब वैसा होना चाहिए। जैसे शेर का उदाहरण आप देते हैं, आप किसी आदमी की बहादुरी को देखकर आप बोलते हैं ये शेर की तरह बहादुर है, क्योंकि इस आदमी में भी बहादुरी है और उस शेर में भी बहादुरी है, लेकिन आप ये नहीं बोलते हैं कि ये गीदड़ की तरह बहादुर है, क्योंकि वहां पर कोई सामान्य धर्म नहीं है। आप किसी के कायरता को जब उदाहरण देते हैं तो आप शेर का नहीं दे सकते, वहां गीदड़ का देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सामंजस्य है। ऐसे आत्म तत्व के प्रतिपादन में आपको उदाहरण चाहिए था, आत्मा कैसे है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि घट की तरह है। आप बोलेंगे घट की तरह है तो घड़ा फूट जाता है, वो पैदा होता है, क्या वैसा है? तो अनात्मा आत्मा को समझाने के लिए उदाहरण नहीं हो सकता है, वो सूचना हो सकता है। बहुत सारी सूचनाएं हम दे देते हैं, जब न्यायिकों ने ईश्वर के बारे में कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक तर्क प्रणाली विकसित की, उन्होंने अनुमान दिया, उन्होंने कहा कि सारी जो दुनिया है इसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं परमात्मा है, एक सूचना है। आप जैसे धुएं को देखकर आप अनुमान लगाते हैं कि यहां अग्नि है, किसी के चेहरे को देखकर आप अनुमान लगाते हैं कि आदमी बहुत प्रसन्न है, ऐसे परमात्मा की हम खबर ले सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन वो उदाहरण नहीं हो सकते हैं, उदाहरण अलग होता है। यहां उदाहरण दिया आकाशवत, आकाश सर्वगत है, आप जहां भी जाएंगे आपको आकाश मालूम पड़ता है, अंदर है बाहर है, और वो आंखों से दिखता भी नहीं, वो काला है गोरा है टेढ़ा है कुछ मालूम नहीं पड़ता है, और वो नित्य है, वो पैदा होता हुआ और मरता हुआ भी मालूम नहीं पड़ता है, जैसे पृथ्वी मालूम पड़ती है, जल मालूम पड़ता है, तेज मालूम पड़ता है, वायु भी मालूम पड़ती है, इधर से उधर बहती हुई, लेकिन आकाश तत्व मालूम नहीं पड़ता है, पैदा होता हुआ मरता हुआ। इसलिए श्रुति ने कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, और बात तो सत्य है कि आप आकाश को जब देखते हैं तो आकाश बहुत विस्तार को है, विस्तार को प्राप्त है, और आकाश की सबसे बड़ी विशेषता है आकाश में कुछ भी गुजरे लेकिन उसकी सूचना आपको नहीं मिलेगी, वो अपने कुछ चिन्ह नहीं छोड़ेगा, आकाश अपने में कोई चिन्ह छूटने नहीं देता है, ये आकाश की बहुत बड़ी विशेषता है। ये आकाश एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये समझने के लिए, अपने को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, हमें कैसे होना है ये सीखने के लिए। जब वहां से गुजरता है कोई पक्षी तो अपने कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है, या आकाश वहां कोई चिन्ह छूटने नहीं देता है, यदि कोई पक्षी पृथ्वी पर गुजरता है वहां पदचिन्ह अंकित हो जाते हैं, कोई आदमी गुजरता है तो पदचिन्ह अंकित होते जाते हैं। आपको मालूम पड़ता है कि यहां से कोई पक्षी गुजरा है, आपको मालूम पड़ता है यहां से कोई पशु गुजरा है, कोई आदमी गुजरा है, लेकिन आकाश से कोई गुजर जाए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में कोई खबर नहीं मिलेगी कि यहां से कौन गुजरा। चाहे रॉकेट भी गुजर जाए और दो चार दस दिन के बाद आप खोजो यहां से क्या गुजरा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये वेदांत की बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप श्रवण करते हैं साक्षी भाव, आप श्रवण करते हैं विपश्यना, साक्षी का मतलब है केवल देखना। एक दूसरा शब्द है वेदांत का, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, प्रमाता। ये वेदांत के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रमाता और साक्षी। प्रमाता माने नापने वाला। ये शास्त्र के शब्द कोई अलौकिक नहीं है, ये हमारे जीवन के लौकिक अनुभव के शब्द हैं। हम प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं। प्रमाता माने नापने वाला। जहां प्रमाता है वहां त्रिपुटी है। त्रिपुटी माने प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये तीन भाव हैं। आप जब किसी चीज को देखते हैं तो आप प्रमाता कहलाते हैं, और आपकी इंद्रियां इंद्रियों के द्वारा देखते हैं इसलिए उसको प्रमाण कहा जाता है। इंद्रियां प्रमाण है, ये माइक है, इसमें क्या प्रमाण है? आंख प्रमाण है, आंख ने देखा और मालूम पड़ा ये माइक है, तो माइक के होने में आंख प्रमाण है। ये माइक प्रमेय हुई, मैंने इसको जाना, ये प्रमेय हुई, और आंख के द्वारा जाना इसलिए आंख प्रमाण हुआ, और मैंने जाना इसलिए मैं प्रमाता हुआ। ये हमारी पांचों इंद्रियां अनात्म पदार्थ के होने में प्रमाण है, शब्द के होने में कान प्रमाण है। आप बोलते हैं, ये हमने सुना है, वस्तु के अस्तित्व में आपका कान प्रमाण हुआ। आपको कितना भी बोलेंगे नहीं सुना तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमने सुना है, वो वैसा ही सुना है। आपके स्पर्श के होने में उष्णता, ठंड के होने में प्रमाण आपकी त्वचेंद्रिय है, सुगंध दुर्गंध के होने में नासिका प्रमाण है, स्वाद के होने में आपकी रसनेन्द्रिय प्रमाण है। ये आपकी पांचों इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उसके आश्रयभूत जो पदार्थ हैं उनके होने में प्रमाण है, आप जान लेते हैं, इसलिए आपको प्रमाता कहा जाता है। कि जीवात्मा प्रमाता है और अपने ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहर के पदार्थों को जान लेता है, इसलिए बाहर के पदार्थ प्रमेय हैं। और हम सुबह से शाम तक हम प्रमाता की अवस्था में रहते हैं, हम प्रमाता की अवस्था में रहते हैं, और ये प्रमाता जीव की अवस्था है, और साक्षी भाव ये परमात्मा की अवस्था है। भगवत गीता आपको प्रमाता में जीने की शिक्षा नहीं देती है, वो साक्षी भाव में जीने की प्रेरणा देती है। वेदांत साक्षी भाव में जीना है। हम जब भी बाहर के पदार्थों को देखते हैं तो वहां पर एक प्रक्रिया होती है, वहां प्रमाता बोला है, प्रमाता माने नापने वाला, प्रमाता माने जो नापता है, और बिना नापे बाहर की वस्तु मालूम भी नहीं पड़ेगी। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसे नहीं दिया है। हम बाहर जाके पदार्थ को नाप लेते हैं और नापने के बाद पदार्थ मालूम पड़ता है कि ये स्त्री है, वो पदार्थ मालूम पड़ता है ये पुरुष है, मालूम पड़ता है ये घट है, मालूम पड़ता है ये माइक है। मालूम कैसे पड़ेगा बिना नापे? क्योंकि वस्तु का एक आकार है, वस्तु का होना एक आकृति है, और प्रत्येक वस्तु की अपनी आकृति है, और वो विभिन्न आकृतियों के कारण पदार्थ विभिन्न है। पदार्थों का अलग होना ये आकृतिगत है, और वो आकृति आपको मालूम करने के लिए उसका नापना बहुत जरूरी है। हमारी आंख बाहर जाके नाप लेती है, इस माइक को नाप लेती है, ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये गोल है, ये काला है, और उसके बाद मालूम पड़ता है ये माइक है। हमारी आंख बाहर जाके नाप लेती है, और उसके बाद मालूम पड़ता है कि आदमी है, ये इतना ऊंचा है, इतना मोटा है, काला है, बिटका है, बहुत सुंदर है, कुरूप है, ये बहुत सारी चीजें मालूम कैसे पड़ती हैं बिना नापे? और हम जब नापते हैं तो सामने वाले को पूछते भी नहीं है, हम सबको तो नाप लेते हैं। और जब हम नाप करके देख लेते हैं तो वो चीज फिर बाहर नहीं रहती है, वो संस्कार बनकर हमारे चित्त में प्रवेश कर जाती है। आपने उसको नापा, वो आपको बहुत अच्छी लगी, नहीं नापा तो मालूम नहीं पड़ी, और नापने के बाद आपको बहुत कुरूप लगी, अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी वो आपके चित्त में प्रवेश करेगी। हमारी इंद्रियां ज्ञान के द्वारा हमारे मन में संस्कारों को पैदा करते हैं। आप किसी भी चीज को देख लेते हैं तो देखना संस्कार पैदा करते हैं। अब वो देखना बाहर नहीं रहा, वो देखना अंदर चला है, उसी को तो संस्कार बोलते हैं। आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, ट्रेन में, प्लेन में, और वो बातचीत होने लगी, और उस व्यक्ति तो खो गया, प्लेन से उतर गए, और उसके बाद भी वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसके संस्कार बने और वो हमारे चित्त में अवशिष्ट हो गए, और वो संस्कार स्मृतियों को पैदा करेंगे, आकार को पैदा करेंगे, विक्षेप को पैदा करेंगे। अब वो बाहर नहीं रहा, वो व्यक्ति अंदर चला है। ये प्रमाता है। आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो नाप करके देख लेते हैं, आप नापते हैं उसका आकाश, उसका प्रकाश, उसके शब्द, उसका आचार व्यवहार, और उसके बाद वो सारा संस्कार बनकर हमारे अंतकरण में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद वो सारी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं, हमारे जीवन का अंग हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और वो केवल आज नहीं, बहुत लंबे समय के लिए, केवल इस जीवन के लिए नहीं, वो अनेकों जन्म के लिए। आज इसको पुनर्जन्म कहते हैं, यही तो संस्कारों का हिस्सा है। जिसको आप पुनर्जन्म कहते हैं वो यही तो है। आपने कल जिसको जाना वो आपके जीवन का हिस्सा बना, वो संस्कार बने, उसको अदृष्ट बोला है। हमारे शास्त्र ने कहा वो अदृष्ट है। अदृष्ट इसलिए क्योंकि आपके दृष्टि का विषय नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर में रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर रिकॉर्ड हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं मालूम नहीं पड़ती, इसलिए वो अदृष्ट बोला। और वो फिर अनेकों जन्म में चलता है, वो संस्कार हमारे जीवन के अनेकों जन्म में चलते हैं, कल के आज हैं, आज के परसों हैं, वो बहुत सुदूर हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा बन गए। लेकिन एक दूसरा शब्द है साक्षी भाव, मैंने आप देख रहे हैं लेकिन नाप नहीं रहे, आप वस्तु को देख रहे हैं लेकिन आप नाप नहीं रहे, केवल आप देख रहे हैं, तो आपको वस्तु मालूम नहीं पड़ेगी। ये साक्षी भाव की बहुत बड़ी विशेषता है, ये वेदांत की बहुत बड़ी विशेषता है। आप किसी को देखो लेकिन उसका विश्लेषण मत करो, उसको नापो नहीं, उसका अन्वेषण न करें। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो अन्वेषण के साथ देखते हैं, हम अन्वेषण करते हैं, केवल हम देखते नहीं। वो आप अन्वेषण करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बहुत त्वरित प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो इतनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है। आपको भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम कितना अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन बहुत त्वरित, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। और अन्वेषण के साथ वो चीज हमें बांध देती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है आपकी भागवत का। सुखदेव जी महाराज पैदा हुए, आप कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद पैदा हुए, मां के पेट में थे, 12 वर्ष के बाद पैदा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सचमुच पैदा हुए। 12 वर्ष के बाद होश आया, 12 वर्ष के बाद मालूम पड़ा, संसार मालूम पड़ा, वैराग्य हो गया, और वो उनका पहला जन्म था, वो पहला जन्म था। 12 वर्ष में मालूम पड़ा, संसार मालूम पड़ा, वैराग्य हो गया, परमात्मा को पाने के लिए चल पड़े, वो उनका जन्म था। और उसके पहले वो मां के पेट में ही थे, हम पैदा होते कहां, हम पैदा होते हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन मां के पेट में ही रहते हैं। आदमी 50 साल का है लेकिन वो मां के पेट में है, अभी होश कहां आया, अभी वैराग्य कहां पैदा हुआ, मालूम कहां पड़ा, संसार। इसलिए आप बहुत बार देखते हैं 80 साल के बूढ़े 50 साल के बूढ़े भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए कई बार आप बोल भी देते हैं, अरे आप बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, आप बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो। हमें मालूम पड़ता है कि हम बहुत बड़े हैं, उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन समझदारी बहुत छोटी है, और इतनी छोटी कि अभी हम तो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। होश आया 12 वर्ष की उम्र में, इसलिए वहां वो बात मालूम नहीं पड़ती कि 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे होंगे। वहां केवल इतनी सूचना है, उनका पहला जन्म हुआ, सुख का जन्म हुआ। ये वैराग्य ही तो सुख का जन्म है। आप बोलते हैं सुखदेव जी महाराज, आप क्यों बोलते हैं, ज्ञान के कारण बोलते हैं, आप वैराग्य के कारण बोलते हैं। और जब वो जाने लगे परमात्मा को पाने के लिए, बहुत सुंदर ये उदाहरण है। आप पिता है व्यास जी महाराज, और उनके मन में बेटे के प्रति मोह है, और वो जाने देना नहीं चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, और वो बहुत आतुर होकर प्रेम से युक्त होकर अपने बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा बेटा रुको रुको, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये उम्र अभी साधना करने की नहीं है। आदमी भी बहुत मजेदार है, आदमी सोचता है बड़े होने के बाद करेंगे, लेकिन वो बड़े होने की परिभाषा क्या है, वहां रोक रहे हैं, ये उम्र नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि यही उम्र है, साधना करने की उम्र भी यही है। यदि आप 12 वर्ष की उम्र में नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। संस्कार तो इसी उम्र में बनते हैं, स्वाभाविक जो आकर्षण पैदा होता है वो इसी उम्र में, लेकिन रोक रहे हैं। व्याज जैसा व्यक्ति भी रोक रहा है, लेकिन वहां इतना वैराग्य है। इसलिए शब्द का प्रयोग किया, परिव्राजक परिव्रजंतम। सुखदेव जी महाराज परिव्राजक हैं, माने उनके अंतःकरण में सच्चा वैराग्य है। और वो वैराग्य आकर्षण और अनाकर्षण से परे है। प्रवृत्ति और निवृत्ति से परे हैं, इसलिए वहां उन्होंने हां नहीं बोला और ना बोला। वो चुपचाप चले गए, उनको बोलना था, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं बोला। उनको समझाना था अपने पिता को, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों शोक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, न उन्होंने हां बोला और न उन्होंने ना बोला। और ये दोनों व्यक्ति के चित्त को अटका देते हैं। जैसे आप बैठे हैं और आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई ये चीज दे, और कोई चीज वो आपको दे रहा हो तो आप वहां उसको मना करते हैं। एक बार की बात है, एक कोई साधु थे, बहुत मजेदार महात्मा थे, उनको कोई भी दक्षिणा दे देता था तो वो दक्षिणा छूते नहीं थे। वो आसपास के किसी महात्मा को बुलाते थे और इशारा करते थे कि दक्षिणा उठाओ, और अपनी आंटी की तरफ इशारा करते बोले इसमें रखो, इसमें रखो। बोलते थे मैं छूता नहीं हूं, बोले इसमें रखो, या तो कपड़ा यूं करते थे बोले कपड़े में डालो। एक महात्मा थे, उनको पैसा लेना नहीं था। आप 1000 रुपए रखो कि 10,000 रखो, वो ना बोलते और ना हां बोलते। बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं इसको उठाओ, इसको भगाओ, इसको उड़ाओ, ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत अनर्थ हुआ, हम पैसा नहीं छूते हैं और आपने पैसा रखा, ये तो बहुत बुरी बात हो। वहां इतना गहरे से निषेध है कि हम उस निषेध को भी आसक्ति की तरह लेते हैं और वहां बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा उपद्रव ये भी, आप ना बोलने में इतना समय गवा रहे हैं। हमने देखा है, वो तो हाथ भी धो लेता, अरे छू गए, पैसा छू गया। और एक महात्मा था, आप कितना भी पैसा दो वो कुछ नहीं बोलते थे, ना हां और ना, वो बैठे रहते थे। और जब उठते थे तो मानो उनके पास कुछ भी नहीं है, यूं उठ के चले जाते थे। लोग बोलते महाराज वहां 1000 रुपए रखे हैं, अब वो किसको दे, बोले क्या पता, आप रखो तो भी और आप नहीं रखो तो भी वहां कोई आसक्ति नहीं है, न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति। ये तो सच्चा वैराग्य है। हम निषेध के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, हम निवृत्ति के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, वो एक प्रवृत्ति की तरह बन जाता है। एक निषेध भी प्रवृत्ति बन जाता है, एक वैराग्य भी आसक्ति बन जाती है। यदि उस वैराग्य में बहुत ज्यादा आग्रह हो, हम बहुत कुछ मौन पर इतना बोल जाते हैं, मौन पर इतना बोल जाते हैं कि मौन अपना रस खो देता है। दो आदमी झगड़ा कर रहे थे और झगड़े का मूल था कि मौन श्रेष्ठ है, और बहुत बड़ा झगड़ा, दूसरे को समझाने के लिए आना पड़ा, और उस व्यक्ति को मालूम पड़ा कि ये झगड़ा कर रहे हैं, दोनों उसका मूल है मौन श्रेष्ठ। ऐसा ही तो है हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजें ऐसे विरोधाभास पूर्ण चलती हैं। यहां सुखदेव जी महाराज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा बेटा बेटा, लेकिन वहां वैराग्य, न अनासक्ति न आसक्ति, न प्रवृत्ति न निवृत्ति, तटस्थ साक्षी भाव। न उन्होंने हां बोला और न ना बोला, वो अपनी ही आवाज उन वृक्षों से टकरा कर आती हुई प्रतिध्वनि रूप वो श्रवण कर रहे थे, वो स्वयं को स्वयं सुन रहे थे। और एक दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर है, वहां से गुजर रहे हैं, नदी है और उस नदी पर बहुत सारी नवयुवतियां स्नान कर रही, तो पुराने जमाने की बात है, अपने अपने कपड़े उन्होंने उतारे हैं और वो स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से गुजर गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ा, और उस मालूम नहीं पड़ने का प्रभाव, उनके बच्चे होने का प्रभाव, उनके युवा होने का प्रभाव भी उन नवयुवतियों के ऊपर नहीं पड़ा। वो अपना स्नान करती रही, और जैसे वहां व्यास जी महाराज गए, उन नवयुवतियों ने अपने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। व्यास जी महाराज के मन में एक प्रश्न उठा, मेरा बेटा यहां से गुजरा और इन नवयुवतियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन्होंने अपने को रोका नहीं स्नान करने से, इन्होंने वस्त्र नहीं पहना, और मेरे वहां पहुंचने के पहले ही इन्होंने अपने अपने वस्त्र पहनना शुरू किया, बात क्या है? ये रहस्य की बात थी, यही तो रहस्य की बात थी, वहां साक्षी भाव है। सुखदेव जी महाराज में साक्षी भाव है, वहां से वो गुजर गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये कौन है, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये स्त्रियां हैं, ये वस्त्र नहीं पहनी है, वहां कोई उत्सुकता नहीं है, साक्षी भाव में कोई उत्सुकता नहीं है, वहां कोई नापने की प्रवृत्ति नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारी आंखों में उत्सुकता रहती है, हम और देखना चाहते हैं, हम वहां खोजना चाहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति वहां जाएगा तो देखेगा ये स्त्रियां हैं, कितनी उम्र की हैं, कितनी सुंदर हैं, उन्होंने कहां तक कपड़े पहने हैं, ये बहुत सारी चीजें उत्सुकता में होगी, और ये तो बंधन है, ये तो आसक्ति है, और वो बात मालूम पड़ेगी, सामने वाले को भी मालूम पड़ेगी कि हमको कोई देख रहा है, ये चित्त की गहरी अवस्था है। आप आसक्ति से किसी की तरफ देखते हैं तो आपकी वो दृष्टि सामने वाले को मालूम पड़ती है, आप देख रहे हैं, आप बहुत अपने आप को छिपा के भी क्यों नहीं देखते हैं, और उसके बाद भी मालूम पड़ता है कि आप कैसे देख रहे हैं, आपकी दृष्टि उसको चुभती है। वहां से गुजरे सुखदेव जी महाराज, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, एक बच्चे की तरह, और व्यास जी महाराज वहां गए तो वहां मालूम होने लगा उन्हें, वहां वो प्रमाता की अवस्था है, व्यास जी महाराज जी को मालूम होने लगा ये तो स्त्रियां हैं और ये नग्न है, मालूम होने लगा, वो भी देख रहे हैं, सुखदेव जी महाराज जी भी देख रहे हैं और व्यास जी महाराज जी भी देख रहे हैं। ये दृष्टि का भेद, एक प्रमाता की दृष्टि है और एक साक्षी की दृष्टि है। सुखदेव जी महाराज को मालूम नहीं पड़ा ये स्त्रियां हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ा ये वस्त्र नहीं पहनी है, उन्हें मालूम नहीं पड़ा ये कम उम्र की हैं। आप जब किसी भी वस्तु को नापकर देख लेते हैं वहां वो वस्तु आपको मालूम होना शुरू हो जाती है और ये जीव की दृष्टि है। और जहां आप साक्षी भाव में होते हैं वहां आपको वस्तु मालूम नहीं पड़ती, वो वस्तु परमात्मा मालूम पड़ती है। वो परमात्मा का भाव नहीं, वो परमात्मा का भाव। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे, बहुत मस्ती में थे, वहां से कोई नवयुवती स्त्री गुजर गई। एक दौड़ता हुआ पीछे से व्यक्ति आया और उसने पूछा, भगवान आपने देखा यहां से कोई स्त्री गुजरी है? बुद्ध ने कहा देखा जरूर है, लेकिन कहना मुश्किल है कि वो स्त्री थी कि पुरुष था। ये बात बहुत गहरी है। बुद्ध जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बुद्ध ने कहा बहुत मुश्किल है कि वो स्त्री थी या पुरुष, गुजरा जरूर। ये साक्षी भाव है, ज्ञानी जीता है ऐसे। ये जीना बहुत रहस्यपूर्ण है। और जब आपको मालूम पड़ा केवल अस्तित्व, साक्षी में केवल मालूम पड़ता है अस्तित्व, और प्रमाता की अवस्था में केवल अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता है, उस अस्तित्व में विशेष मालूम पड़ता है। वहां बुद्ध देख रहे हैं केवल अस्तित्व में, और एक सामान्य व्यक्ति देखता तो केवल अस्तित्व नहीं देखता, वहां स्त्री देखता, वहां पुरुष देखता, बहुत सारी चीजें देखता, और उस देखने के साथ वो बहुत सारी चीजें अपने में समेट भी लेता। आपके कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर पात्र है नचिकेता। नचिकेता का अर्थ यही है, न चिनोति इति नचिकेता, जो चयन नहीं करता है, जो बटोरता नहीं। और हम बटोरते रहते हैं, हमारी आंखें बाहर जाती हैं तो बहुत सारी चीजें बटोरती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ले लेती हैं, वो संस्कारों को निर्मित करती जाती हैं। हम सुनते जाते बटोरते हैं, हमारी इंद्रियां बटोरती हैं, बहुत सी बाहर की चीजें बटोरती हैं। आप ध्यान में बैठे हैं, प्रतिबंध बाहर नहीं है, प्रतिबंध भीतर है। साधना में प्रतिबंध हम स्वयं हैं। आप जो भी कुछ करते हैं, आप जो भी कुछ हैं, आपके होने में साधक आप हैं और आपके नहीं होने में भी आप हैं, आपकी सफलता में भी कारण आप हैं और विफलता में भी कारण आप हैं। आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विफल हैं। उस विफलता के सूत्र बाहर नहीं है, आप विफलता के सूत्र अंदर है। बहुत सारा कचरा है, वो कचरा आपके सामने आ जाता है। आप एकाग्र करना चाहते हैं मन, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो सारी चीजें आपने जमा की हैं, वो सारी चीजें आपने कलेक्शन किया है, वो बटोरा है। ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है, लेकिन आप केवल देखते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज, नचिकेता जो बाहर की चीजें समेटता नहीं, अपने में लेता नहीं, वो केवल देखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप क्या बोलते हैं, वो उदाहरण भी बहुत मजेदार है, वो घटना बहुत सुंदर है वेदांत को समझने के लिए। महात्मा को मिलने के लिए भगवान की पत्नियां जा रही हैं, बीच में नदी है, वहां एक नदी भी है द्वारका में जो समुद्र में मिली है, क्या नाम है उसका, गोमती नदी है। गोमती को पार करके जाना है दुर्वासा जी के पास, और दुर्वासा जी महाराज जी की दो चीजें प्रसिद्ध हैं, एक भोजन और दूसरा क्रोध। वो भोजन ले जा रहे थे, बहुत सारा भोजन ले जा रहे, बहुत सारा भोजन था। भगवान को इशारा कर दिया उनकी पत्नियों ने, प्रभु जाए कैसे, गोमती भरी हुई है। भगवान ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और ये बात सत्य है तो मैया आपको जगह प्रदान कर दी, कि मैया को आप बोल देना हमारे पतिदेव बाल ब्रह्मचारी हो तो आप जगह प्रदान कर दे, ये बात सत्य हो तो जगह प्रदान कर दे। भगवान की पत्नियां हंसने लगी, ये दूसरे को बोलते तो मान भी जाता कोई, लेकिन हम ही को भगवान ने कहा बोलने में क्या है। और भगवान ने विश्वास दिलाया कि ये बात सत्य है। पत्नियां गई वहां, भगवान की पत्नियां भी भगवान से भरोसा करती थी, सचमुच करती थी। जाके उन्होंने बोला गोमती मैया को कि मैया हमारे पतिदेव 16,100 आठ भी हैं पत्नियां होने के बाद भी यदि बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको जगह प्रदान करो। आश्चर्य कहते कि वो मैया ने जगह प्रदान कर दी, बात सत्य हो गई, प्रकृति ने स्टैंप लगा दिया, गोमती मैया ने विश्वास को और मजबूत कर दिया कि तुम्हारे पतिदेव बाल ब्रह्मचारी। उस पार जाने के बाद दुर्वासा जी महाराज जी को भोजन कराया, आपको तो मालूम है वो कितना खाया होगा उन्होंने, एक आधी बैलगाड़ी तो खाई गए होंगे, खूब खाए खूब खाए खूब खाए, तृप्त हो गए। और जो वापस आने लगी, समस्या तो वही थी वापस आने की, भगवान की पत्नियों ने प्रार्थना की भगवान अब कैसे जाए, हम उस पार कैसे जाए, गोमती भरी हुई है। दुर्वासा जी भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, उन्होंने कहा कि जैसे आए वैसे जाओ। पत्नियों ने कहा कि हमने मैया को ऐसा बोला था और मैया ने हमको जगह प्रदान कर दी थी, अब जाए कैसे। दुर्वासा जी हंसने लगे और दुर्वासा जी ने कहा कि इतना खाने के बाद भी यदि मैं भूखा हूं, ये बात सत्य है तो मैया जगह तुमको प्रदान कर देगी। और भगवान की पत्नियां सोचने लगी इतना खिलाया हमने और उसके बाद भी भूखा, ये वेदांत का रहस्य है। और ऐसे ही हुआ, भगवान की पत्नियों ने गोमती मैया से प्रार्थना की इतना खाने के बाद भी दुर्वासा ऋषि यदि भूखे हैं तो हमको जगह मिल जाए, जाने की जगह मिल जाए, जगह मिल गई। यही तो साक्षी भाव है। वहां पर खाते हुए भी नहीं खाना है और हम खाते हुए भी खाते हैं और नहीं खाते हुए भी खाते हैं। ज्ञानी पुरुष खाता हुआ भी नहीं खाता है और नहीं खाता हुआ भी नहीं खाता है, लेकिन अज्ञानी खाता हुआ भी खाता है और नहीं खाता हुआ भी खाता है। वो करता हुआ भी करता है और नहीं करता हुआ भी करता है। वहां आसक्ति है, वहां प्रमाता का भाव है, वहां बंधने का भाव है। ये सुखदेव जी महाराज साक्षी भाव और व्यास जी महाराज प्रमाता का भाव है, जीव का भाव है, और इसलिए वहां पर बंधन है। ये साक्षी भाव का अर्थ यही है, अन्वेषण विरहित दृष्टि। जहां कोई अन्वेषण नहीं, आप केवल देखो, आप केवल देखो, वहां कोई प्रतिक्रिया ना हो, प्रतिक्रिया और अन्वेषण विरहित जो दृष्टि है उसी का नाम साक्षी भाव। प्रतिक्रिया और अन्वेषण के साथ देखना वही प्रमाता का भाव। और जैसे प्रमाता का भाव हमारे अंदर आता है वहां बंधना शुरू हो जाते हैं, हम बंधना शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आकाश तत्व अवधूत दत्तात्रेय ने कहा ये आकाश तत्व ये साक्षी भाव है, ये आकाश तत्व हमें साक्षी भाव की प्रेरणा देता है। आकाश से पक्षी गुजर जाता है लेकिन वहां कोई चरण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं, वहां कुछ भी अपना अवशेष वो छोड़ता नहीं, वो आकाश अपने में अवशेष ग्रहण नहीं करता, वो अपने में संस्कार पैदा नहीं होने देता है। ये आकाश की बहुत बड़ी विशेषता है और वो विशेषता हमारे अंदर होना चाहिए, यही तो वेदांत है। यहां पर अवधूत दत्तात्रेय यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम दुनिया में रहे लेकिन ऐसा रहे बिल्कुल न रहे जैसे, इसको भगवान श्री कृष्ण ने कमल के पत्ते की उपमा देके समझाया, पद्म पत्र मिवाम बसा, जैसे जल में कमल का पत्ता पैदा होता है वहीं पर, और वहीं पर रहता भी है लेकिन वो गीला नहीं होता है, वो सड़ता नहीं है, आश्चर्य की बात, वो पैदा हुआ वहीं पर रहा जिया लेकिन वो सड़ता नहीं है, उसकी क्वालिटी है। लेकिन आप कागज को अखबार को पानी में रखो और उसको ऊपर उठाओ तब तक वो फट जाता है, उसकी क्वालिटी वैसी है, हमारी क्वालिटी वैसी है, हमारा स्तर ऐसा ही है, संसार में हम इतने कच्चे हैं। यह अध्यात्म आपको पकाता है, आपको कमल के पत्ते की तरह बना देता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, किसी ने पूछा संसार में रहते हुए भी हम संसार से प्रभावित कैसे ना हो, यही बात ब्रह्मा जी ने पूछी भगवान से भागवत के प्रसंग में। भगवान ने कहा प्रजा सृज ये दुनिया बना लो, ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया बना लो और बनाते बनाते दुनिया में फंस जाऊं तो, क्योंकि आदमी बनाते बनाते ही तो फंसता है, आदमी मुक्ति के लिए करता है लेकिन वो फंस जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसे ज्ञान का उपदेश करो, ऐसी कोई युक्ति बता दो कि मैं दुनिया बना लूं और दुनिया में न फंसूं, दुनिया मुझे प्रभावित न करे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करता हूं और वहां चतुर्सूत्री भागवत का उपदेश किया है, सारी दुनिया बनाई ब्रह्मा जी ने लेकिन ब्रह्मा जी दुनिया में नहीं फंसे। और हम बहुत छोटी सी चीज बना लेते हैं और उस चीज में फंस जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण है, सब्जी है कटहल, आप कटहल काटते हैं, कटहल काटना बहुत कठिन है, उसके ऊपर का छिलका उतारना पड़ता है और ऊपर का छिलका उतारते समय उसमें से एक चिकना द्रव निकलता है, वो आपके हाथों में चिपक जाता है, आपके चाकू में चिपक जाता है, आपका काटना बहुत मुश्किल है, उसको आप नहीं काट सकते, उस समय आप क्या करते हैं, थोड़ा कड़वा तेल अपने हाथों में लगा लेते हैं, कड़वा तेल उस चाकू को लगा लेते हैं और उसके बाद बहुत आराम से आप कटहल को काट लेते हैं, बहुत आराम से काट लेते हैं, आपके हाथ चिपकते नहीं। ऐसे संसार जो है, संसार में रहना, संसार में जीना, ये कटहल काटने से भी ज्यादा कठिन है, यहां तो बहुत अटकाव है, बहुत भटकाव है, यहां बहुत बड़ी फिसलने, आप कहां फिसल जाए, आप कहां अटक जाए कोई भरोसा नहीं है, किसी भी चीज का अपना भी भरोसा नहीं है, हमारा भी भरोसा नहीं है, कहां हम अटके, हमारा भी भरोसा नहीं कहां पर पैर फिसल जाए। अब इससे बचने का उपाय क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा इससे बचने का एक ही उपाय है कि तुम तेल का उपयोग करो। बनारस में जब हम पढ़ते थे वो बड़े बड़े पहलवान लोग ठंडी में ठंडे पानी से स्नान करते, ठंडे पानी से स्नान करते, जहां आप अंगुली डालना बहुत मुश्किल, इतना ठंडा पानी और ठंडी का समय, और बड़े मजे से नहाते थे। एक बार मैंने पूछा कि आप ऐसे नहाते कैसे हो, उन्होंने कहा कि हम कड़वे तेल की मालिश करते हैं। एक पहलवान दूसरे पहलवान की मालिश करते, कड़वे तेल की मालिश करेगा और उसके बाद आपके शरीर के ऊपर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है, कवर निर्मित हो जाए, आप स्नान करो फिर आपको मालूम नहीं पड़े, आपको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भगवान के नाम का तेल आप लगा लो और संसार में कितना भी जीवो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये संसार के धक्के मालूम नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग हैं। आप जब गाड़ी में बैठते हैं उसमें बहुत धक्के हैं लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ते क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए, वो स्प्रिंग आपके सारे धक्के पी जाते हैं। आप सामान्य बैलगाड़ी में बैठ के चलोगे तो बहुत बड़े धक्के लगेंगे लेकिन आपको कार में धक्के नहीं लगते। उसका अर्थ ये नहीं है कि कार में धक्के नहीं है, कार में तो और धक्के होने चाहिए क्योंकि और स्पीड से चल रही हो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ते क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो स्प्रिंग पी जाते हैं। ये ज्ञान स्प्रिंग है, ये भक्ति स्प्रिंग है, ये वैराग्य स्प्रिंग है और उसका उपयोग करोगे तो आपको ये संसार के धक्के कभी नहीं लगेंगे, आप अटकोगे नहीं, आप भटकोगे नहीं। ये साक्षी भाव है, ये भगवान का नामस्मरण और ये ज्ञान की साधना, भक्ति की साधना आपको ले जाती है साक्षी भाव में, और उसके बाद फिर संसार की कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करती है। ये शिक्षा उन्होंने आकाश से, आप आकाश की तरह जीवो, साक्षी भाव में जीवो। बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं शेष कल।